أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسہ سالانہ کے ایام قریب سے قریب تر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے کی دو مصروفیات جو توجہ اپنی طرف مرکوز رکھتی ہیں یعنی اجتماع خدام الحمدیہ و لجنہ و اجتماع انصار اللہ و اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بخیر و خوبی گزر چکی ہیں. اب تمام تر توجہ ہمیں جلسہ سالانہ کی طرف مبذول کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کے وہ حصے جو کچھ وقت چاہتے ہیں اب ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کا وقت آ گیا ہے. مہمانوں کی تیاری کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جو انتظامیہ کے لیے پریشانی کا موجب بنتی ہے وہ مکانات کا حصول ہے. جب تک وقت کے اوپر وقت پر ان کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کتنے دوست اپنے اپنے مکانات یا ان کا کچھ حصہ پیش کریں گے وہ صحیح طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں زائد ضرورت کے لیے عارضی انتظام کس قدر کرنے ہیں. اور وہ عارضی انتظامات بھی وقت چاہتے ہیں، مثلا کیمپنگ گراؤنڈز بنانا اور ٹینٹوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے مناسب سہولتیں مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح تخمینے کا تقاضا کرتی ہیں. تو اس لیے وہ دوست جنہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہوگا اپنے دلوں میں کہ ہم مکان کا یہ حصہ سلسلے کے انتظام کے تابع مہمانوں کو دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اس اطلاع دینے میں دیر نہ کریں اور جلد از جلد کوشش کریں کہ یہ اطلاع افسر جلسہ کو پہنچ جائے. اور اس کے علاوہ جو نئے مکان بن رہے ہیں ان کو بھی اس سے اچھا اور موقع میسر نہیں آ سکتا کہ مکان کا افتتاح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کریں. بہت ہی بابرکت افتتاح ہوگا یہ، تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ نامکمل حالت میں بھی ہیں یا اندازہ لگا کر اگر وہ سمجھیں کہ 15 دسمبر یا 20 دسمبر تک وہ سپرد کر سکیں گے تو اس وقت کی جو کیفیت ہے ان کے اندازے کے مطابق کہ دروازے ہوں گے یا نہیں، کھڑکیاں ہوں گی یا نہیں، کتنے کمرے ہیں، غسل خانوں کے انتظام کی کیا کیفیت ہے، لیٹرینز موجود ہیں کہ نہیں، ان کے متعلق پوری معلومات افسر جلسہ کو مہیا کر دیں تاکہ وہ ان کو بھی اپنے تخمینوں میں شامل کر لیں. مکانات کے علاوہ دوسری ضرورت جو بہت اہم ہے وہ خدمات کی پیشکش ہے. اہل ربوہ خدا کے فضل کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں خدمات پیش کرنے میں. ایسے ایسے گھر بھی ہیں جن میں بعض میں ایک ہی بچہ کام کرنے والا ہوتا ہے، وہی وہ پیش کر دیتے ہیں اور کس طرح پھر وہ کام چلاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بہرحال بہت ہی اعلیٰ روح دکھائی جاتی ہے ربوہ کے کارکنوں کی طرف سے، خصوصاً چھوٹے بچے اس محبت اور اخلاص کے ساتھ سردی میں کام کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر روح وجد کرتی ہے. کسی دنیا کی قوم میں ایسے بچوں کا نمونہ نہیں ملے گا. ना अमीर कौम में, ना गरीब में, ना मगरबी में, ना मशरकी में, कि एक आला मकसद की खातिर, और वो मकसद भी ऐसा आला कि रब अजीम से ताल्लुक रखने वाला मकसद हो, उसको खुश करने के लिए छोटे छोटे बच्चे नहायत ही गरीबाना हालत में, जिनको तन ढांपने के लिए कपड़े भी मुयसर ना आ रहे हों, वो वालहाना जज्बे के साथ खिदमत करें, और ऐसी खिदमत करें कि जो मजदूरों की मजदूरियों से बढ़ जाए। ऐसे मुशक्कत के काम भी बच्चे मैंने करते देखे हैं, टोकरियाँ भर भर के रोटियों की लेके जाना, और सारी सारी रात, फिर थोड़ा सा वक्फा मिलता है, फिर वो सारा दिन वही काम करते हैं, कि जो आम तौर पर मजदूर भी इस मेहनत से नहीं कर सकते। तो इसलिए अहले रब्बा को ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप खिदमत का जज्बा पैदा करें, वो अल्लाह के फजल से पहले से मौजूद है। सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि आप इस खिदमत को पेश करने में देर ना करें, और जो भी खिदमत के लिए बच्चा या जवान पेश हो, उसको उनकी जिम्मेदारियों से पहले से ही मुत्तले कर देना चाहिए। बाज़ दफ़ा इतने बड़े इंतज़ामात में बाज़ कमज़ोर भी दाखिल हो जाते हैं, बाज़ बच्चे बुरी आदतें लेकर भी आते हैं। ये तो नामुमकिन है कि एक सोसाइटी कुल्लियतन पाकीज़गी के बेहतरीन मेयार तक पहुँच जाए। इसलिए हमें इल्म है कि ये वाक़ियात होते हैं, यानी नहायत ही आला मुखलिस बच्चे भी मिलते हैं, उनमें कमज़ोर भी होते हैं, बाज़ों को गाली देने की आदत होती है। ऐसे भी बाज़ दफ़ा वाक़ियात हुए हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चों की चीज़ चोरी कर ली। तो ये ऐसे वाक़ियात नहीं हैं जिनको हम छुपाएँ दुनिया से, ये हकायक हैं, और हमें कुरान की तालीम के मुताबिक हकायक के साथ जुड़ के रहना है, उसी में हमारी ज़िंदगी है। तो उस कुरान करीम की अज़मत और हौसला देखें, ऐसी अज़ीम शान किताब है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जबकि इंसानियत अपने मेराज को पहुंची है और मकारमुल अखलाक पर फायज इंसान ने, जो इंसान कामिल था, तरबियत की है, उस वक्त के मदीने की कमज़ोरियों के हालात भी हमारे लिए रिकॉर्ड कर दिए और बताया कि मुनाफिकीन क्या कर रहे हैं, कहाँ गंदगी हो रही है, कहाँ क्या क्या गलाजतें हो रही हैं, और सूरज की रोशनी में वो जो कोने सूरज की रोशनी से महरूम रहे थे, उनके मुतल्लिक कुरान करीम में ये बताने में कोई बात महसूस नहीं की कि उन्होंने अपने लिए अंधेरा अख्तियार किया, तो सूरज की मौजूदगी में भी अंधेरे कायम रहे, उन कोनों में, उन खतरों में, उन मुख्तलिफ बंद कमरों में जिन्होंने रोशनी को अपने लिए पसंद नहीं किया। तो रब्बा की सोसाइटी तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे आला गुलाम, सबसे महबूब गुलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की कायम करदा सोसाइटी है। इसलिए आका से बढ़कर रूहानी इनकलाब का दावा तो किया ही नहीं जा सकता, नामुमकिन है। इसलिए वो हकायक जो कुरान ने नहीं छुपाए, उन पर पर्दा डालने के कोई मौका नहीं, कोई बेमकसद लग बात होगी। तो हम महज अच्छों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, बल्कि जो कमजोरियां हैं उनको नुमाया करेंगे, बताएंगे और उनकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। कौले शदीद के बगैर तो नामुमकिन है इस्लाह। तो जो कमजोरियां मैंने देखी हैं अपने इंतजामात के दौरान, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ रहे हैं, उनमें बाज़ बातें जो हैं वो मैं खुलकर बयान करना चाहता हूँ। अभी से नौजवानों की तरबियत शुरू कर दी जाए, बच्चों की तरबियत शुरू कर दी जाए, और बार बार घरों में ये बातें हों कि इस जलसे पर इनमें से कोई बात भी नहीं दोहरानी चाहिए। मसलन नमाज में कमज़ोरी दिखाते हैं बाज़ बच्चे, हमारी ज़िंदगी का तो मकसद ही इबादत का क़याम है, अगर उसमें हम कमज़ोरियाँ दिखाने लगेंगे तो इस जलसे का क्या फ़ायदा फिर। और फिर बाहर से आने वाले आपसे सीखने के लिए आते हैं, इंतज़ामात में जो मशगूल बच्चे हैं उनको नमाज का नहायत आला नमूना दिखाना चाहिए, बल्कि सारे अहले रब्बा को बेहतरीन मयार दिखाना चाहिए नमाज का, और फिर दिखाकर उस पर कायम रहना चाहिए। वो कोई दिखावे की चीज़ नहीं है इबादत, मुराद सिर्फ इतनी है कि आने वाले नेक नमूना पकड़ें, और उसके बाद वो नेक नमूना आपकी ज़िंदगी का जुज़ बना रहे हमेशा के लिए। तो इबादत पर बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है कि हमारे कारकुनों का कम से कम मयार नहायत ही आला हो। दूसरा हिस्सा है ज़ुबान की सफाई, उसमें गाली, सख्त कलामी, गुस्से में आकर अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सकना, ये सारी चीज़ें मेहमान नवाजी के तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ हैं, आम अखलाकी तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ हैं। इसलिए कारकुनों को अभी अपने जहन में ये जुगाली करते रहना चाहिए कि हम में कौन कौन सी कमज़ोरी है जो मेज़बान की शान के ख़िलाफ़ है और जो आम हालात में इंसान की शान के भी ख़िलाफ़ है। तो उन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। तीसरी चीज है दिल की सफाई। जब तक दिल में मेहमान नवाजी ना हो, जब तक दिल मेहमान की मोहब्बत से भरे ना, अज खुद मेजबानी के असलूब उसके सलीके आ नहीं सकते। समझाएं जितना चाहें आप किसी को, अगर उसकी दिल में मेहमान नवाजी नहीं है और मोहब्बत का जज्बा नहीं है, तो सीखे हुए की अदाएं और होंगी। जो दिल से फूटती हैं वो अदाएं बिल्कुल और होती हैं, उनमें एक अजीब बेख्तियारी पाई जाती है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के वाक़यात आप पढ़ें तो उस वक्त हर वाक़े पर, हर लफ्ज़ पर दिल गवाही देता है कि यह दिल से फूटी है मेहमान नवाजी, इसमें कोई तसन्नो, कोई किसी किस्म की बनावट का दखल नहीं। तो हमें यही नमूना अपनाना चाहिए और बच्चों, बड़ों, औरतों, मर्दों सबको समझाना चाहिए कि मेहमान नवाजी होती क्या है। इस सिलसिले में मैंने सोचा है कि मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मेहमान नवाजी से मुतल्लिक ऐसे वाक़यात जो आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हों या मसीह मौऊद अलैहि सलाम के ज़माने में उनको हमने दोबारा उजागर होते देखा हो, उन पर मुश्तमिल मज़ामीन कसरत से फैलाए जाएँ, मसाजिद में पढ़े जाएँ, बच्चों को सुनाए जाएँ, छोटे छोटे मज़ामीन घरों में तकसीम किए जाएँ और ये आम एक सिलसिला चल पड़े कि मेहमान नवाजी क्या होती है, हमारे आला मकासद क्या हैं मेहमान नवाजी में। जब तक हम उनको हासिल नहीं करेंगे हम इसका हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक बैरून की खिदमात का ताल्लुक है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे कामों के शोबे ऐसे हैं जिनमें रब्बा के अराकीन मुहैया नहीं हो सकते, क्योंकि काम इतने फैल रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से तेज़ी के साथ और आने वालों की तादाद मुकामी आबादी से इस तेज़ी से बढ़ रही है नस्बत के लिहाज से, कि अब ये मुमकिन नहीं है कि रब्बा के अराकीन हर किस्म की खिदमात खुद ही कर सकें। इसलिए हमेशा तो नहीं लेकिन अब कुछ चंद सालों से रब्बा के बैरून खुद्दाम भी अपने आप को खिदमात के लिए पेश करते हैं, अंसार भी और खुद्दाम भी। तो उनको भी मैं मुतल कर रहा हूँ कि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, ये खुतबा सुनते ही जल्द अज जल्द वो अपने नाम भिजवाना शुरू कर दें। अंदाज़ा है कि 700 बैरूनी कारकुनान की ज़रूरत होगी, लेकिन ये उस सूरत में है अगर जलसे पे आने वालों की तादाद उसी नस्बत से बढ़े जिस तरह हर साल का उवेश बढ़ती है, और अगर उस नस्बत में इजाफा हो जाए, अल्लाह ताला अपने फजल से अचानक इस तादाद को बढ़ाए, तो फिर और कारकुनों की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। इसलिए 700 की ज़रूरत है तो 1000 पर हमें तसल्ली पानी चाहिए। इसलिए कोशिश यही करें इंतज़ामिया कि 1000 कारकुनान की फहरिस्तें मुकम्मल हो चुकी हों और उनके काम भी मुअय्यन हो चुके हों, यानी बैरूनी कारकुनान के। एक हिस्सा है घरों को आरामदेह बनाने से मुतल्लिक। उस सिलसिले में सबसे पहले तो सफाइयाँ अभी से शुरू हो जानी चाहिए, मुरम्मतें छोटी मोटी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हर इंसान अपनी तौफीक के मुताबिक मुरम्मतें करता ही रहता है, लेकिन ये मौका सबसे अच्छा है मुरम्मत का, क्योंकि इसमें आप अल्लाह के मेहमानों की खातिर मुरम्मत करेंगे और आपकी ये मुरम्मत जो है ये इबादत भी बन जाएगी, आपके घर की भी मुरम्मत हो रही होगी, आपके दिल और रूह की भी मुरम्मत हो रही होगी और अल्लाह ताला उसमें भी बरकत बख्श रहा होगा। तो इसलिए इस नीयत से मुरम्मत करें कि अल्लाह ताला की खातिर आने वाले मेहमान, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के मेहमान भी कहलाते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम मुहैया हो। इस सिलसिले में जो दिक्कतें पेश आती हैं बसा औक़ात, उनमें एक बिस्तरों की कमी है। बाज़ दफ़ा मेहमान बार बार बताने के बावजूद सफ़र की दिक्कतों की वजह से या किसी और वजह से अपने बिस्तर नहीं लेके आते, और ये नामुमकिन है कि एक ख़ास तादाद से ज़्यादा आने वालों को बिस्तर मुहैया किए जा सकें। उसके लिए एक घर में गुज़श्ता चंद साल पहले मैंने एक बड़ी अच्छी तरकीब देखी थी, वो बड़ी सादा सस्ती सी तरकीब है बिस्तर बनाने की, उसको अगर इख्तियार किया जाए तो वक्ती ज़रूरत तय हो जाती है, पूरी हो जाती है। उन्होंने पुरानी खाद की बोरियां लेकर उनको धोकर उसके गिलाफ बना लिए और उनमें ये पराली खोरी ये भर दी, और उनको ऊपर नीचे स्टैक करके एक तरफ रख लिया, और जब मेहमान उनके आए जिनके पास बिस्तर वगैरह नहीं थे तो उनको उसी की तोशकें दे दी, और तोशकें जो थी जायद वो ऊपर लेने के काम आ जाती हैं, चुनाचे डबल बिस्तर बन गया इस तरह। और उन्होंने से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि नहायत ही कामयाब तजर्बा है, गर्म भी बहुत रहता है और नरम भी रहता है, और बहुत खुश हुए मेहमान इस तोशक को देखकर। तो बहुत सस्ती तोशक बन जाती है, रूई खरीदने की जरूरत कोई नहीं है, पराली आपको मुफ्त मिल जाएगी, और बीवियां बच्चे मिलके बेटियां दो दो टांके लगा के तोशके बना लें, और उसके बाद फिर आपको रखने में आराम है। यानी उसको खाली किया, और अगर कोई गाय बकरी वगैरह है उसको खिला दी तोशक, यानी तोशक के अंदर का हिस्सा, और बाहर वाला धोकर फिर उसको अपने तय करके रख लें, बहुत छोटी सी जगह में ये आपकी तोशकें आ जाएंगी। तो इस तरह की तरकीबें सोच के और भी मेहमानों के लिए आसाइश के इंतजाम करें। एक है गुस्ल खाने और लेटरिंग्स की दिक्कत। उस सिलसिले में मैंने देखा है कि अगर कोई मेज़बान ये इरादा करे कि मैंने कुछ करना है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत ख़रीदने की पेश आती है। अक्सर तो अगर इंसान फैसला कर ले, इरादा कर ले, तो आसानी से इंतज़ाम हो जाता है। गुसलखाने बनाने का तो वक्त भी नहीं है, उसके लिए खर्च भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वक्ती गुसलखाने आसानी से बनाए जा सकते हैं। मसलन हमने अपने घरों में भी देखा है, शुरू में मैंने इस तरह के बनाए थे कि बाहर ईंटों का एक थोड़ा सा बना लिया, उसके ऊपर मिट्टी के मटके रख दें, उनमें पानी भर दें, या अगर तौफीक हो तो गर्म पानी के साथ इंतज़ाम कर दें, एक छोटा ड्रम रख के उसमें आग जला दी जाए, ताकि जिसने भी गर्म करना हो पानी, थोड़ा सा पानी मटके से लिया, थोड़ा सा वहाँ से ले लिया, छोटे छोटे शीशे लटका दें दीवार के साथ फासलों पर, और चिलमची अगर नहीं बनाई जा सकती तो बैठने का इंतज़ाम कर दें, फिर नीचे बैठकर छोटी छोटी पीढ़ियों के ऊपर मेहमान अपने शेव बना सकें, जिसने शेव करना है, जिसने दाढ़ी बनानी है वो दाढ़ी बनाए, मगर शीशे होने चाहिए और पानी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और एक गुसलखाना काफ़ी नहीं होता। आमतौर पर लोग समझते हैं कि गुसलखाना तो है, लेकिन जहाँ 80 आदमियों की लाइन लग जाए गुसलखाने के लिए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा वक्त ज़ाया होता है। इसी तरह छोटे छोटे टॉयलेट्स भी बनाए जा सकते हैं आरजी, छोटे छोटे बोर्ड करा के जगह जगह पर्दे का इंतज़ाम हो जाए तो मामूली बात है, इतना बड़ा खर्च नहीं है। बाहर जलसा भी इस सिलसिले में मदद करता है, यानी जलसा सालाना का इंतज़ाम। तो टॉयलेट्स को घरों में बढ़ाने की ज़रूरत है, और लेटरिंग्स का भी जहाँ तक मुमकिन हो ज़्यादा इंतज़ाम किया जाए। सजावट भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कुरान करीम ने फरमाया अपनी जीनत लेकर जाया करो। असल जीनत तो वो अंदरूनी सजावट है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ज़ाहरी सजावट, ज़ाहरी जीनत भी सुन्नत है। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी साफ़ सुथरे और पाकीज़ा और ऐसे जीनत को अख्तियार करने वाले वजूद थे, और आपके सहाबा भी जहाँ तक तौफीक थी यही करते थे। तो घरों की जीनत भी मेहमान नवाजी का एक हिस्सा होती है। उसमें बाज़ महल्ले अगर चाहें तो एक रंग इख्तियार कर सकते हैं, इकट्ठा मंगवा लिया जाए सस्ता, और वो बाज़ महल्ले बाज़ रंग का पैटर्न बना सकते हैं कि हमारे महल्ले की दीवारें बाहर की तरफ सड़क नजर आने वाली दीवारें भी हैं उनका ये रंग होगा, और दरवाज़ों का ये होगा। उसके अगर तखमीने तैयार कर लिए जाएँ तो बहुत मामूली खर्च के ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, बाज़ महल्ले अच्छे लगेंगे एक ही रंग में, और दूसरे अहले महल्ला को बाद में बड़ा लुत्फ आएगा ये नज़ारा देखकर, सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं उनके अपने भी काम आने वाली चीज़ है। सजावट से तबीयत में बशाशत पैदा होती है, ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है पहले की नस्बत, उसी घर में ज़्यादा लुत्फ आने लग जाता है जहाँ जीनत हो। तो जीनत के लिए ज़रूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए का इंतज़ार किया जाए, गरीबाना जीनत भी होती है, सिर्फ उसके लिए सलीका चाहिए, इरादा हो, सलीका हो, तो जीनत इख्तियार करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सहनों और गलियों की सफाई, ये होगी तो साथ जीनत होगी, ये तो नहीं हो सकता कि ऊपर से सजावट हो और नीचे गंद हो, तो ये मैं कहना भूल गया था पहले, ये पहले किया जाए। सफाई का इंतज़ाम सेनों की सफाई और गलियों की सफाई, इन दोनों को मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, क्योंकि बाद दफा सेन की सफाई का मतलब होता है गलियों का गंद, और गलियों की सफाई का मतलब है घर के अंदर गंद पड़ा रहे। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, दोनों को बैक वक्त एक ही वक्त में मेडिटेशन नजर रखकर फिर अपना लेला है अमल तजवीज करें। आपके सेनों का गंद गलियों का गंद नहीं बनना चाहिए, और गलियां इसलिए नहीं साफ होनी चाहिए कि आपके सेन गंदे रहते हैं। दोनों चीजें बैकवा साफ करने के लिए आपको सिर्फ अपने जराए पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि इंतजामिया को लाजमन इसमें आपसे ताउन करना होगा। खुदामुल अंबिया, अंसारुल्लाह, सदरान महल्ला, इनकी कमेटियां बने और इन बातों का ख्याल करें कि वो लोग जो अपना गंद बाहर फेंकेंगे उनको क्या करना चाहिए, और उस गंद को वक्त के वक्त पर वहां से दूर करने के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए। वो गंदी नालियां जिनमें मुसाफिरों के पांव पड़ जाते हैं अंधेरे में और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके लिए क्या शक्ल बनानी चाहिए। कोई भी राहगुजर ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां कोई खतरा मुसाफिर के लिए हो। इमातुल अज़ा ईमान का एक हिस्सा है, हर तकलीफ दे चीज को दूर करना है हमने अपनी गलियों वगैरह से। इसी तरह बाजारों में सफाई बहुत जरूरी है। बाजारों में दुकानदारों का ये तभी रुझान होता है कि वो अपनी दुकानों को ऐसे मौकों पर सजाते हैं जहां बिक्री बढ़ने का इम्कान हो, लेकिन बाज दफा वो अपनी दुकानें सजाकर अपने गंद बाहर फेंक रहे होते हैं, इसलिए वहां भी इन दोनों चीजों को इकट्ठा रखना है। दुकान की सजावट बाजार की तकलीफ में ना मुंतकिल हो जाए, और दुकान की वसत बाजार की तंगी में मुंतकिल ना हो जाए। ये दो तकलीफें हैं जो अमूमन ऐसे मौकों पर पेश आ जाती हैं। तो इंतजामिया को मुस्तैद होना चाहिए कि खड़े बनने बढ़ते बढ़ते वो गलियों को ना रोक लें और बाजारों में चलना ना मुश्किल हो जाए, और सफाई हर तरह से जहां तक भी मुमकिन हो सड़कों वगैरह की जरूरी इख्तियार की जाए। लेकिन एक शोबा हमारा है मक्खी मार और मच्छर मार, उसके इंचार्ज मैंने डॉक्टर उमरुद्दीन, उसका इंचार्ज डॉक्टर उमरुद्दीन साहब को बनाया था। वो काम खुदा के फजल से अच्छा करते रहे हैं, दवाइयां भी मिल गई हैं, लेकिन अभी फिर भी मक्खी कहीं कहीं नजर आ जाती है। तो जलसे से पहले इसके लिए स्पेशल स्कीम बनाने की जरूरत है। बिल्कुल कला कमा कर देना चाहिए मक्खी का। मच्छर के लिए तो पता नहीं उनको अभी तक दवाइयां मुहैया हो सकी हैं कि नहीं, लेकिन मक्खी के लिए तो काफी वाफरत मकदार में दवाई आ चुकी है। तो घरों में वो तकसीम करें थोड़ी थोड़ी पुड़ियों में, या महलों की मार्फत या खुदाम की मार्फत, या बाजारों में कारकुनान के जरिए उसकी आम एप्लीकेशन का इंतजाम किया जाए। मसाजिद में जहां जूतियां रखी जाती हैं उनके पास अगर बोरियां भिगोकर रख दी जाएं तो मक्खियां उसकी तरफ मायल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें से खास बू भी निकलती है जो मक्खी को खींचती है। और इसी तरह सेल्स, विंडो सेल्स वगैरह जो दहलीजें हैं उन पर रखवाने का इंतजाम किया जाए। फिर जो गंदगी है, पब्लिक गंदगी के स्टोर बने हुए हैं जो, उन पर छिड़काव का इंतजाम किया जाए। तो खुदा के फजल के साथ बहुत थोड़े अरसे में करीबन कलाकमा किया जा सकता है मक्खी का, और इसके लिए तीन हिस्सों में तैयारी करनी चाहिए। एक अभी एप्लीकेशन हो जाए, फिर जलसे के करीब, लेकिन इतना करीब ना हो कि मक्खी बैठकर फिर खानों के अंदर मरना शुरू हो, क्योंकि जब बिल्कुल करीब पहुंच जाए वक्त, उस वक्त अभी दवाई ताज़ा होती है, और अगर मक्खियां बची हुई हों तो वो उस पर बैठकर बाज़ दफ़ा मरती नहीं और कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर सालन या दूध में जाकर फिर वो जान दे देती हैं, तो काफ़ी गंद होता है इस तरह। इसलिए जलसे से इतना पहले ज़रूरी है कि जो मक्खी मारनी है पहले मार चुके हों, और फिर जलसे के मान बाद, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ बची हुई मक्खियाँ जलसे की गजा पर खूब नशोनुमा पाती हैं, तो उस वक्त फिर उसके बाद फौरन बाद आप इंतजाम कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला रब्बा एक ऐसा शहर बन जाएगा जो मक्खी से पाक हो, और इसके हाथ से ये मशरिक में एक नमूने का शहर होगा खुदा के फजल से। जहां तक इंतजामिया के कामों का ताल्लुक है, इंतजामिया को आर्जी तौर पर जो काम है वो तो ये कि सड़कों पर रहनुमाई के लिए बोर्ड आवीजा करने चाहिए, जहां तक मुमकिन हो सके कमेटी के ताउन और इजाजत के साथ, जहां इजाजत और ताउन जरूरी हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि मुख्तलिफ जगह जिनमें आने वाले दिलचस्पी रखते हैं उनकी रहनुमाई अच्छी हो सड़कों के ऊपर, और कुछ नक्शे भी छोटे बनाकर सड़कों के उन बोर्डों के ऊपर या नीचे आवीज़ा किए जा सकते हैं। जो मुस्तकिल तवज्जो का काम है वो पब्लिक टॉयलेट्स और लेटरिन वगैरह का इंतज़ाम है। हमारे मुल्क में ये बड़ी एक कमज़ोरी है, यानी हमारे मुल्क में नहीं बल्कि मशरक़ के बहुत से मुल्कों में, कि इस तरफ तवज्जो नहीं करते। और यहाँ तक के बाज़ बड़े बड़े शहरों में भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। जो ज़मींदार बेचारा कभी चला जाता था उसकी तो हालत ख़राब होती थी बेचारे की। और मुझे एक दफ़ा एक दोस्त पुराने बुढ़े ने बताया कि मैं लाहौर गया देखने, तो मैं कैद हो गया। मेरा जुर्म सिर्फ यह था कि मुझे पेशाब आ गया था और कोई जगह नहीं मिलती थी। तो उस ज़माने में ठंडी सड़क कहते थे माल रोड को, तो ठंडी सड़क पर मैं बहुत दौड़ा हर तरफ, मुझे कोई जगह नहीं मिली। फिर मैं वहीं एक तरफ बैठ गया तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और वो थाने पहुंचा दिया कि तुमने गंदी की है जगह। भाई जी, जो लोग सफाई चाहते हैं, जगह गंदी नहीं करवाना चाहते, वो साथ इंतज़ाम भी तो किया करते हैं। ये तो नहीं कि मीलों मील का शहर हो उसमें एक भी टॉयलेट ना हो और तवक्को आप ये रखें कि बाहर से आने वाले बाहर जाकर ही फारिग हों। इसलिए अहले रब्बा को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पब्लिक कन्वीनियंसिस की, क्योंकि यहाँ बार बार कसरत से बाहर से लोग आते हैं। और यूं भी हजूम खलायक आने आने वाले लोगों का हर हफ्ते भी लगा ही रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पब्लिक कन्वीनियंसिस की ज़रूरत है, उसके लिए तो एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जलसा सालाना सत साला जुबली को मद्देनजर रखकर ये मंसूबा बनाना चाहिए और उसके कुछ ज़रूरी हिस्सों को हर साल मुकम्मल करते रहना चाहिए। और इस साल भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे पैमाने के गुसलखाने और के साथ उनकी सफाई का इंतज़ाम भी, जिन लोगों को गुसलखाने इस्तेमाल करने का सलीका ना आता हो उनको समझाने वाला कारकुन भी ड्यूटी पर हो, ऐसे सेट्स बाद ज़रूरी जगहों पर हो जाएं। जलसा सालाना के करीब भी होना चाहिए और बाज़ारों में बाज़ जगह, तो इस वक्त जितने भी वक्त थोड़ा है चूँकि, इसलिए अगर मुस्तकिल ना हो सके तो कुछ आर्जी सही, लेकिन कोशिश यही करें कि अगर एक महीने के अंदर बाद अच्छी मुस्तकिल किस्म की लेटरिन और टॉयलेट्स वगैरह बन सकें तो बनाए जाएं। ये तो है अमूमी बातें जो मैंने कहनी थी, और एक हिस्सा है जो इसमें से रह गया था कहने वाला, वो है मेहमान की खुराक। अगरचे जलसा की तरफ से मेहमान की खुराक का इंतज़ाम होता है और खुदा के फजल से जहाँ तक ज़ोर लग रहा है इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि खुराक के इंतज़ाम में बेहतरी हो, मशीनों में जो रोटी पकती है उसकी वजह से कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जलती है बाज़ दफ़ा कच्ची रह जाती है, उसको भी बेहतर करने के लिए कोशिश हो रही है। ऑटोमेटिक, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक बनाने की भी कोशिश हो रही है, और तजर्बा जो किया गया उम्मीद है इस साल उसको बहुत सारे लंगरों में दाखिल कर दिया जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता हम पेड़े वालियों से और रोटी बनाने वालियों की खिदमात से मुस्तग़नी होते चले जाएंगे। और बहुत बड़ी खराबी जो रोटी की क्वालिटी में पैदा होती है वो इसी वजह से होती है, पेड़े बनाने वाली कोई मोटा बना रही है, कोई पतला बना रही है, मशीन में एक आंच रखी हुई है, कहीं से ज़्यादा वजनी रोटी गुजर रही है, कहीं से कम वजनी, कहीं से वही मशीन जला रही है, कहीं वही मशीन कच्चा रख रही है। तो ये सारी दिक्कतें ऑटोमेशन के ज़रिए दूर हो सकती हैं। जब खुदकार मशीनें काम करेंगी जो पेड़ा भी बना रही हों और रोटी को शक्ल भी दे रही हों, तो इंशाल्लाह ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो इस साल ये तजर्बा किया जा रहा है, लेकिन जो मुझे एक इम्कान नज़र आ रहा है, ख़तरा कहने लगा था, वो ख़तरा तो नहीं इम्कान है, वो ये है कि अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएँ तो मौजूदा इंतज़ाम उसके लिए हो सकता है नाकाफ़ी हो। ऐसी सूरत में हमें तैयार रहना चाहिए घरों में कुछ ज़ायद इंतज़ाम के साथ। जितने घर हैं जो जिनको खुदा ने तौफीक दी है वो पहले भी कोशिश करते हैं कुछ मेहमानों का बोझ वो हमेशा खुद ही उठाते हैं, और एक हिस्सा है सिर्फ जो लंगर खाने की तरफ मुंतकिल होता है। लेकिन उसके अलावा भी एहतियातन तैयार रहना चाहिए कि अगर उनको ये कहा जाए कि आपने 3 या 4 वक्त का खाना अपने मेहमानों को खुद देना है, तो वो उसके लिए राशन पहले से तैयार रखें और सिस्टम भी बना के रखें कि किस तरह फिर रोटी पकाई जाएगी। ऐसी सूरत में मेहमानों को साथ बेतकल्फी से शामिल किया जा सकता है, कोई इसमें आर की बात नहीं है। ये जो पाकिस्तान से लोग लंदन वगैरह जाते हैं ऐसे मुल्कों में, तो बड़ी खुशी से खिदमात अपनी पेश करते हैं और वो भी मिलजुल कर आपस में भाई बहनों की तरह मिल के गुजारे करते हैं। तो आने वाले भी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार होके आएँ कि अगर किसी घर में ये खिदमात की ज़रूरत हो, रोटी पकाने के सिलसिले में, सालन बनाने के सिलसिले में, बर्तन धोने के मामले में, तो वो सारे मिलकर गुजारा करेंगे। और जहाँ तक राशन का ताल्लुक है, वो आप चंद दिनों का राशन जायद रख लें, या आप जो राशन ज़्यादा खरीदेंगे खुदा खुदा के नाम पर, खुदा की खातिर, वो आपको बाकी राशन में बरकत दे देगा। सारे साल के खर्च में ज्यादती नहीं होगी, बल्कि आप देखेंगे कि कमी आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला के देने के ढंग बड़े निराले हैं। बरकतें भी हैरत अंगेज तरीक पर अता फरमाता है, और ये तजुर्बा है हमारा रोज़मर्रा का, इसमें कोई फर्जी किस्सा नहीं है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए ज़ाती मेहमान नवाजी का इस दफ़ा ख़ास तौर पर इंतज़ाम करें। आखिरी बात मैं जो कहा करता हूँ, हमेशा हमेशा कहता रहूँगा, वो दुआ है। दुआ के ज़रिए मदद मांगें। बहुत से ऐसे मुश्किलात के मौाक़े होते हैं जिनके ऊपर आप जितना मर्जी मंसूबा बनाएं, जितनी मर्जी तफसील से सोचें, उन तक आपकी निगाह जाती ही नहीं। वो अचानक पैदा होने वाले वाक़ियात हैं, जो हादसा दुनिया के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दुआ है जो आपके रोज़मर्रा के मंसूबों में भी बरकत देती है और उन इत्तेफाकी हादसा के शर से भी आपको महफूज रखती है, और आपके हौसलों को भी वसअत देती है, आपकी क़ुव्वत अमल को भी वसअत देती है, और आपकी कोशिशों को बेहतर फल लगाती है। इसलिए अभी से ख़ास तौर पर जलसा सालाना की गैर मामूली कामयाबी के लिए दुआएं शुरू कर दें। अल्लाह ताला हर पहलू से हाफ़िज़ व नासिर हो, और नहायत ही आला पाकीज़ा मोहब्बत के इस्लामी अख़ुव्वत के माहौल में हमें आने वाले मेहमानों की बेहतरीन खिदमत की तौफीक बख्शे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله